good evening, listeners. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Sonu Sood, and with me, my co-anchor in Hindi, Amit Goyal, is here. Welcome, Amit.
Namaskar. मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे। उदयन, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद अमित।
सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ सुनो।
Benchmark domestic indices fail to hold initial gains. Sensex falls 201 points. Nifty closes below 22,400. Most Asian indices register decline. European indices display mixed trend. And global crude oil prices drop. Brent crude trades at $70.58 per barrel.
आर्थिक सुर्खियों में, घरेलू शेयर सूचकांकों में शुरुआती बढ़त के बाद गिरावट। सेंसेक्स में 201 अंक की गिरावट और निफ्टी भी 22,400 से नीचे दर्ज हुआ। एशियाई शेयर बाजारों में आमतौर पर गिरावट नजर आई। यूरोपीय शेयर बाजारों में मिला जुला रुझान रहा और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। ब्रेंट क्रूड $70.58 प्रति बैरल के आसपास। सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। घरेलू शेयर बाजारों में आज शुरुआती बढ़त कारोबार के अंत तक कायम न रह पाई और बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% की गिरावट से 201 अंक फिसल कर 74,000 से नीचे 73,829 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.3% के नुकसान से 73 अंक गिरकर 22,397 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.7% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.6% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई।
The benchmark domestic equity indices today failed to hold initial gains and ended with modest losses. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, fell 201 points or 0.27% to close at 73,829. The National Stock Exchange Nifty 50 also lost 73 points or 0.33% to settle at 22,397. The broader market indices at the BSE also logged losses. The mid-cap index dropped over 0.7% and the small-cap index slipped over 0.6%. In the Sensex index, 22 out of 30 companies ended in negative territory. Among the top laggards, Zomato and Tata Motors both dropped over 1.9% each. IndusInd Bank slipped over 1.8% and Asian Paints fell almost 1%. Conversely, among the top gainers, SBI Bank as well as ICICI Bank both rose over 0.6% each. NTPC and Sun Pharma both gained over 0.4% each and Tata Steel increased over 0.3%. In sectoral indices at the BSE, 19 out of 21 sectors ended down. Among the top laggards, realty lost almost 1.8%. Auto slipped over 0.9% and consumer discretionary fell over 0.8%. Conversely, in the top gainers, BankEx gained 0.14% while PAR ended nearly flat. Overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,457 companies declined, 1,518 advanced and 130 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 10 companies hit their 52-week high, while 268 hit their 52-week low. Udin, what would you say? You know, Sensex has been running almost flat this week. Today, of course, we have seen a little more than 201 points fall. But compared to the U.S. markets, where we are seeing a major fall, here we are seeing a resilience comparatively. Why do you think that is?
Well, I mean, in terms of the bottom, shall we say some support from the bottom is coming from still the regular inflows are happening, although it's gone down a little bit. As the recent data shows, I'm talking about systematic investment plans. of mutual funds. So those are retail money that's coming in. I mean, those are the regular investors. People who are trading and others, maybe we would be getting some other kind of reports soon if this continues. So that's a very important source of support. Also, Sonu, what happens is lots of other institutions also invest. So there could be insurance companies, which is, again, long-term money. They might be investing. Then you have these provident funds who invest only a small portion, relatively small portion, in ETFs. So all these things, typically, these things were not there, say, 15, 20 years back, but now they are there. So every time there is a downward pressure, they come and counteract it. But then what happens is a larger sentiment, which is a global sentiment, it's just too powerful for these forces to counteract completely. Completely eclipsing, you can't do it. So as the famous saying goes, that in the short term, market is like a voting machine. So there are too many people voting, they're not feeling good, then the markets would be under pressure. And in the long term, as the same saying goes, it's like a weighing machine. But you know, when you most of the investors who are investing in the equity markets, it's very difficult for them to, you know, that's how people are programmed, for them to look long term. But that's how that is the nature of the beast, I guess.
उदयन, अगर सेंसेक्स के आंकड़ों की बात करें, 74,000 के लेवल से अगर सेंसेक्स नीचे आता है, क्या ये वाकई में एक चिंता जगाता है या निवेशकों में कुछ घबराहट पैदा करता है? क्योंकि निफ्टी में भी हम लगातार निचला स्तर देख रहे हैं, 23,000 के स्तर को तोड़ा, 22,500 के स्तर को तोड़ा, 22,400 के आसपास आज भी दर्ज हुआ है. कितनी अब घबराहट पैदा होने की आशंका नजर आती है?
देखिए, सवाल बहुत दिलचस्प सवाल पूछा था. मैं एक अंडर वन मिनट इसको जवाब देने की कोशिश करूंगा. निफ्टी अगर 50 है तो वो सबसे वैल्यूएबल 50 कंपनीज भारत के से वो इंडेक्स बनती है, और वो ऑटोमेटिकली वो चेंज होता रहता है, वो रिव्यू होता है, उसमें आता है. इसका मतलब क्या है? सबसे बेहतरीन कंपनीज जो हैं उसमें कोई निवेशक निवेश कर रहा है, और ये एक्चुअली आप अगर उसमें निवेश कर रहे हैं तो सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में आप हिस्सेदारी कर रहे हैं
जी.
तो अगर आप उम्मीद करते हैं कि भारत 7% या 7.5% से बढ़ता रहेगा, तो ये ऐसी कंपनियां की जो ग्रोथ है वो 7% तो नहीं होगी, उससे कहीं ज्यादा होगी. तो फिर तो आपको बिल्कुल कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप लंबी अवधि पर अगर आपने निवेश किया है निफ्टी में, मतलब मैं सिर्फ निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, निफ्टी 50 100 में भी किया है और आपको पैसे परसों चाहिए, फिर तो आप नेचुरली चिंता करेंगे. तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है ऐसे वक्तों में, ये फिर से दोबारा बोला जाता है कि जब आप निवेश कर रहे हैं तो आप उन चीज़ों के लिए निवेश करिए जो आपके, मतलब चाहे वो निफ्टी हो या इंडिविजुअल स्टॉक्स हो, जो कुछ
लंबी अवधि में
या लंबी अवधि, जहाँ पे आपको मार्केट ऐसे गिर भी जाए, अगर मान लीजिए ये जो गिरा है, किसी ने अगर मान लीजिए 2020 में उन्होंने निवेश किया था, वो आज भी बहुत अच्छे मुनाफे में होंगे. तो मार्च अगर 2020 में है तो बहुत जबरदस्त मुनाफे में होंगे, क्योंकि उस वक्त कोविड के चलते एक जबरदस्त गिरावट आई थी. तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि ये ना धीरे धीरे ये
कहां से
और ये ना एक वोल्टेज स्टेबल वक्त जो है एक वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह है. तो शुरू में जो उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव, जैसे अवधि बढ़ती चली जाती है, जो उतार चढ़ाव होता है वोल्टेज का, वो बिल्कुल प्लेन करता चला जाता है. अब ये सवाल उठता है कि आप कब आपने निवेश किया था, जितने आप ज्यादा देर तक करेंगे उतना बेहतर.
लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो कहीं चिंता जाता थी, लगातार गिरावट का एक लंबा दौर आ रहा है, संभलने का मौका मिलता है अगर सुबह बाजार कुछ उम्मीदें जगाता है या सेंसेक्स के नंबर कुछ उम्मीद जगाते हैं तो शाम होते होते धराशायी हो जाते हैं. तो ऐसे दौर में हम क्या माने, बाजार का बॉटम आउट हो गया, होने वाला है या कब तक होगा?
देखिए, ये चिंता बॉटम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चिंता उनको करनी है जो ऑन अ डेली बेसिस बाजार से पैसे कमाते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं. तो उनका वो शायद मार्केट मंत्र नहीं सुन रहे होंगे, मतलब एडवाइस के लिए, वो सिर्फ न्यूज के लिए सुन रहे होंगे. पर अगर कोई निवेशक है जो कोई किसी मान लीजिए कोई अपने फ्यूचर स्टडीज के लिए, या अपने कोई 5-7 साल या 8 साल बाद कंपनी खोलना चाहते हैं बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए, ये टैंजेबल गोल्स होते हैं जिनमें आपको बहुत साइजेबल अमाउंट ऑफ पैसे चाहिए होते हैं, उनके लिए ये बात दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखिए जैसे हाई टाइड होता है लो टाइड होता है, अब ये सोच के तो एक शिपिंग लाइन तो नहीं जाएगी ना, अगर क्रूज निकलना होगा वो उस हिसाब से चलेंगे। अगर मान लीजिए अगर आपका ट्रैफिक जैम भी है और आपको दफ्तर जाना था तब भी आप दफ्तर तो जाएंगे, तो ये दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, तो उसमें चिंता नहीं करना, आपको अपने लक्ष्य की तरफ
भरोसा बनाए रखें और लगातार निवेशित रहें।
बिल्कुल
उदयन, आई'd लाइक टू नो फ्रॉम यू, यू नो विद द यूएस कॉन्स्टेंटली पुशिंग फॉर अ लेवल प्लेइंग फील्ड, फर्दर ट्रेड नेगोशिएशंस एंड पोटेंशियल रिटेलिएटरी टैरिफ्स are likely in the coming months. So what does this mean for the stock markets and especially for the Indian stock market?
We'll definitely be under pressure. There's no doubt about it. Because initially the thought was that US investors thought, as it was called the Trump whatever trade or whatever, they thought that it's US is going to do very well. Now, because of the uncertainty that has come about, Sonu, because when you are imposing tariffs and other people are imposing tariffs on your products, what's happening is basically, first level, you don't know the companies that you have invested, you don't know how their sales is going to behave. If you don't know how their sales is going to behave, you don't know how their profits are going to behave. And an equity investor is basically it's a share of the profit of the company. So you're taking risk to get a share of the profit. If you don't know what's going to happen there, then you will start becoming cagey. You don't know how things are, your investment is going to pan out. You cannot do a calculation. Broad calculation, an estimate as to what is the right price at which you're buying, making the investment. So all these things, that's why markets hate uncertainty, because there's no visibility they can get at a broad level. It's uncertain.
Yeah.
So you can expect this to go on till this to and fro keeps happening.
So this uncertainty that you're talking about, you know, even Morgan Stanley mentioned that there's global uncertainty and policy uncertainty in various countries, and India has policy certainty. That is something that they focused on while saying that the Indian stock markets have a bright future. And they said that small and mid caps, they were highly overvalued, and now their valuations are at a reasonable and healthy level. How much do you agree with this, that despite this about 14% fall from the September highs in Sensex and Nifty, and more than 20% fall in small and mid-cap index, this view that it is a healthy correction, how much do you agree with that?
I completely agree with it, because, you know, sometimes what happens is, as I said, that's not my saying, markets in the short term are like a voting machine. Everybody is excited. You keep buying. Then suddenly you realize that you have bought too much. You move far ahead of the reality. So sometimes people, investors tend to move ahead of the ground reality. So at some point, Sonu, what's going to happen is some of this froth and some of this heady behavior, you know, you're basically detoxing after a very celebratory. Raat ko bahut party hui hai.
In fact, for 9 years,
so there was a lot of celebration. We won't talk about what exactly happened. And sir, mein dard hai, there are headache and all that. So detoxing is happening, and it's not a bad thing to happen. Now, what I'm saying is important for the listeners is, a lot of people think that when markets go up or down or sideways, people need to do something in response. It is not. Sometimes not doing is also an act. You know, because you need to know what you want from your investment, what you want to get out of it. And sometimes not reacting to every possible development is also a decision. So it's not necessary. It's only the traders who will have to do something, because they have to earn their daily bread or whatever they want to do. But an investor, especially a retail investor, need not respond to every market development. And a lot of them, they just need to be well informed. And, you know, you need to basically review things maybe once a year.
उदयन, बहुत संक्षेप में एक चीज और जानना चाहूंगा। पिछले कुछ दिनों में हमें ये देखने में आया था कि रियल्टी जो क्षेत्र है वो बाउंस बैक कर रहा था, कहीं उम्मीदें जगा रहा था। आज रियल्टी में भी जो है उसमें भी गिरावट रही है। अब क्या माना जाए कि बाजार में क्या इतने सारे, क्योंकि अगर हम अपने घरेलू सूचकांकों को तो देखते हैं या इंडस्ट्रीज के जो मानक को देखते हैं तो उसकी स्थिति पे तो ऐसी कोई चिंता नजर नहीं आती। क्या सिर्फ वैश्विक स्तर का जो असर है वो बाजार में अभी भी दबाव बनाया हुआ है, या इस तरीके से समझाया जाए कि ठीक है एक लेवल पे आने के बाद अब जो ओवर हैवी वेट्स थे उसको एक रीजनेबल लेवल पे आ जाना चाहिए?
देखिए, अगर अब इसको ऐसे देखा जा सकता है, ये मेरा देखने का तरीका होगा कि मान लीजिए आपके पास एक तालाब है और वहाँ पे एक वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई का एक सोर्स है और वो पानी बाहर से आ रहा है और एकदम से बहुत सारा पानी आ जाता है और पूरा जो उसमें उस तालाब में अगर कुछ दो चार नाव हैं वो एक एक्सेस पानी के जैसे वो ऊपर उठ जाते हैं। अब अगर वो पानी निकल जाता है पर आपके तालाब का तो ऑलरेडी पानी का लेवल है तो उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, पर लेवल नीचे थोड़ा सा आ जाता है या ज्यादा आ जाता है। पर वही एक सिचुएशन हुआ है जब चाइना के वनस्पत हम लोग अट्रैक्टिव लग रहे थे, उसके बाद वहां पे करेक्शन हुआ, फिर जो डिस्कशन अभी हमने टैरिफ्स के ऊपर किए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें लोगों को बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत है। हम लोग ऐसी इकोनॉमी नहीं है जहां पे 50% 100 रुपये अगर भारत की GDP है मान लीजिए तो 50 रुपये जो है एक्सपोर्ट करके हम निकालते हैं, हमारी एक कॉन्टिनेंटल साइज इकोनॉमी है,
घरेलू का हमारा कंजम्पशन
बहुत अच्छा है, तो वो हमें रेजिलियंस देता है। पर इम्पोर्टेंट ये है कि हमें बाहर के साथ हम लोग बहुत इंटीग्रेटेड अब ज्यादा हो गए, हर साल विद
पैसा तो आएगा ही
बाहर, तो यस तो वो आपको फर्क पड़ जाता है।
Talking of resilience, just a small question. The macroeconomic figures which came out yesterday, consumer price index in February, showed a big drop. It came down to 3.6%. And IIP figures for January, they showed an uptick to 5.1%. So both were benign. You think that this is going to have a positive impact on the economic sentiment and stock market sentiment over a long period of time if this trend continues and if the expectation of RBI reducing interest rates goes up?
Yeah, so it'll, if you know what it is going to do, I think, Sonu, is that if there are less than great headlines coming from abroad, it's going to go and counteract and it'll make the market more resilient. But I don't think it'll insulate us. The external forces are just too powerful.
नजर डाल लेते हैं रुपए पे। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 19 पैसे की मजबूती से 87 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। डॉलर इंडेक्स कारोबार के दौरान 103.7 के स्तर पर नजर आया।
And the Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange will be closed for trading tomorrow in observance of the Holi festival. Trading in the equity, equity derivatives, securities lending and borrowing and currency derivative segments will also remain suspended tomorrow. Meanwhile, the commodity market will remain closed during the morning session but will resume trading activities from 5 p.m. to 11:30 p.m. in the evening session.
और अपने फिर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर। अमेरिका में मुद्रास्फीति में नरमी से फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के बावजूद एशियाई बाजारों में आज गिरावट नजर आई। हांगकांग का हैंगसेंग 0.6%, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.4%, जापान का निकेई और दक्षिण कोरिया का कोस्पी लगभग पूर्व स्तर पर बने रहे। हालांकि सिंगापुर के स्टेट टाइम सूचकांक में मामूली बढ़त भी नजर आई। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में मिलाजुला दौर रहा। लंदन और फ्रांस के शेयर बाजार लगभग पूर्व स्तर पर बने रहे जबकि जर्मनी के शेयर सूचकांक में 0.4% तक की गिरावट नजर आई।
US stocks displayed a mixed trend yesterday as cooler than expected inflation data eased concerns about the grappling economy. The Nasdaq Composite added over 1.2%, S&P 500 rose almost 0.5%, while the Dow Jones Industrial Average declined 0.2%. Earlier, the Labor Department's Bureau of Labor Statistics report on Consumer Price Index showed consumer prices softening more than analysts expected, providing reassurance that inflation is headed in the right direction and kept hope intact that the US Federal Reserve could cut its key interest rate this year. US consumer prices increased less than expected in February. On a month-on-month basis, the consumer price index rose only 0.2% last month after accelerating 0.5% in January. On a year-on-year basis, the CPI increased 2.8% in February over February last year, after climbing 3% in January. So these inflation figures which have come out from US, they are also better than expected. But with the tariffs kicking in now, and you know, in April also more tariffs are expected to be implemented, you think this rosy picture will stay, or we can expect?
I highly doubt it, Sonu, because that is what people are saying. Experts feel that the Federal Reserve, which is the central bank for United States, they are just waiting to see how this whole this tariff related events actually plays out, and they will take decisions accordingly. So I think you know, the picture, the movie is still on. We are actually moving on to the next act.
So it's a cautious absolutely phase for everybody.
Absolutely.
विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 के पहले नई दिल्ली में आज एक कार्यक्रम में भाग लिए रहे थे। कार्यक्रम में सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक समुदाय तक पहुंच बनाना है। कार्यक्रम में 100 से अधिक देशों के राजदूत और उच्चायुक्त भी भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दुनिया के तेजी से बदलने के साथ ही दृश्य श्रव्य और मनोरंजन का स्वरूप भी बदल रहा है। वेव्स शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण 1 मई से 4 मई तक मुंबई में आयोजित होगा। ये इस तरीके का एक नया चैप्टर खोलने की बात है, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं। और अगर अवसर की बात करें या व्यापारिक अवसरों की बात करें, तो तकरीबन $30 अरब का सालाना व्यापार भारत से होता है। भारत वैश्विक तौर पर 5वें स्थान पर आता है, और ऐसा अनुमान है कि अगले 3 वर्षों में, 2028 तक, $30 अरब का कारोबार बढ़कर $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं, उससे इस तरह के व्यापार और जो संभावना है, वो कितना उम्मीद जगाती है?
देखिए, उसमें बेसिकली जब आप बाहर से, विदेशों से लोगों को बुला रहे हैं, तो नॉर्मली ऐसी जगह में जाके बिजनेस डील्स होती हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, और उसमें जो जो लेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज तो होती हैं, पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इतनी हो रही हैं, जहाँ पे आपको जो एंटरटेनमेंट हो, जो भी हो, मतलब इस एरिया में उनके ऊपर वो राइड कर रही हैं। जैसे स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ पे आप ऑडियो वीडियो आप सब वो कंज्यूम कर पा रहे हैं। तो ये जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो बिजनेस जनरेट करने के लिए, न्यू टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म में कैसे राइड करके एफिशिएंटली वो पहुंचेगा, नंबर टू। नंबर थ्री है कि आप देख रहे होंगे कि कंजम्पशन में ग्लोबल रीच आ रहा है, स्ट्रीमिंग और दूसरी चीजें जो हैं, इंटरनेट बेस्ड जो हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे कोरियाई कुछ सीरीज हैं, भारत में बहुत कामयाब है, तो उसी तरीके से भारत के पास वो अपॉर्चुनिटी है। अगर आप विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं, तो ये सॉफ्ट पावर और ये सॉफ्ट पावर से जुड़ी हुई जो कॉमर्स है, जो आपने डबल होते हुए टर्नओवर के बारे में बात की, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
शुरुआत भी भारत कर रहा है
बिल्कुल,
और सरकार का जो नजरिया है बिल्कुल साफ और
बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें आपको वो मिले और सड़कें और पुलें नहीं बनानी पड़ रही, ये तो फटाफट चालू हो सकता है
जी। विश्व की सबसे बड़ी आवासीय छत और छत पर सौर ऊर्जा योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत ऐतिहासिक 10 लाख सौर संयंत्र की स्थापना हो चुकी है। पिछले वर्ष फरवरी में योजना के लागू होने से अब तक देश भर में इसका विस्तार तेजी से हुआ है। इसके अंतर्गत फिलहाल 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को 4,770 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दी जा चुकी है। चंडीगढ़, दमन और दीव ने सरकारी इमारतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना का 100% लक्ष्य भी हासिल कर लिया है। राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात भी इस दिशा में तेजी से कार्य कर रहे हैं। ये शायद एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और लंबे समय में जिसका असर बहुत तेजी से निकलेगा, जो हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं को तो पूरा करेगा ही करेगा, साथ ही साथ हरित ऊर्जा की तरफ भी कदम बढ़ा देगा।
देखिए, हमारे कमिटमेंट्स भी हैं, हमने जो ये जो एनर्जी में ट्रांजिशन करने के हमने कमिटमेंट किए हैं, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा ये भी है कि हमें कई चीजें जैसे सोलर पैनल्स वगैरह हैं, जिसमें चीन एक लीडरशिप पोजीशन में, वहां पे हमें भारत में मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसको लागू करना है।
South Africa will host the first G20 Trade and Investment Working Group, TIWG, meeting under its presidency from March 18 to March 20. The TIWG meeting, which will be held virtually, will bring together senior officials from G20 member countries, as well as the European Union and the African Union. The Deputy Director General of Trade at the Department of Trade, Industry and Competition, Ambassador Zolelba Lumbi-Mita, said this would be the first of the four proposed meetings of the TIWG, which will culminate in the G20 Trade Ministers' meeting to be hosted by South Africa in October. How hopeful are you that this multilateral organizations will be effective in the new world order?
These are alternative platforms, Sonu. So it's always good to have multiple platforms where you can explore opportunities, engage with countries, and get look out for opportunities, because we are looking at a global role and benefit from that global role in a win-win kind of a way, not an exploitative way. So these G20, this particular platform is another opportunity for us.
And for the Global South, for the development of the entire Global South, it is very important that these organizations, they stay effective and stay active.
Completely agree with you.
Oil prices dropped today. Brent crude was trading over 0.5% down at $70.58 per barrel. WTI crude was also trading almost 0.6% down at $67.28 per barrel when reports last came in. Meanwhile, the U.S. commercial crude oil inventories increased by 1.4 million barrels to 435.2 million barrels in the week ending 7th March, according to data released by the Energy Information Administration.
सराफा बाजार में सोना आज 0.2% की बढ़त से 87,180 रुपये प्रति दस ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी मामूली बढ़त से 99,340 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल के वायदा कारोबार में सोना 0.2% की तेजी से 86,840 रुपये प्रति दस ग्राम पे रहा, जबकि चांदी 0.3% के नुकसान से 99,181 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। और अगर वैश्विक नाइमेक्स की कॉमेक्स की हम बात करते हैं तो वहां पे भी तकरीबन $2,951 के आसपास सोना है, जबकि चांदी $33.60 के आसपास रही है। अब ये जो स्तर आता है, अभी वैश्विक परिदृश्य में सोना और चांदी भारतीयों के मन में तो स्वाभाविक है इसके प्रति ललक थी, है और रहेगी। क्या सोने और चांदी ने लगभग 1,00,000 के स्तर को तो छू लिया है, इसके आगे की बात अब कहां तक? क्योंकि ऐसी भी उम्मीदें हैं या ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही थी कि अब हम अगले 6 महीनों में चांदी और सोने का एक नया स्तर देख सकते हैं।
बिल्कुल, जब तक ये जो अनिश्चितता है, द अनसर्टेनिटी है, तो गोल्ड मतलब सोने में निवेश में इंटरेस्ट बना रहेगा। पर कई लोगों को इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे के सारे स्टॉक्स बेच के या इक्विटी म्यूचुअल फंड बेच के सारा सोने में चले जाएं। हमेशा अगर 100 रुपये का आपका वैल्यू है निवेश, उसमें 10 रुपये तक रखें और वो फाइनेंशियल एसेट्स में, मतलब ETF हो गया, अब तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स नहीं है, मतलब नए वो नहीं आ रहे, तो वो अगर एक्सपोजर आप रखते हैं तो ऐसे साल जहां पे इतना उतार चढ़ाव हो रहा है, तो जैसे मैं वोल्टेज स्टेबलाइजर के बारे में बात कर रहा था, तो वो रोल प्ले करते हैं आपको। मतलब एक ऐसा साल नहीं आ पाता जब आपका ओवरऑल रिटर्न जो है ऑफ चला जाता है, तो एक स्टेबिलिटी सी आ जाती है, कंसिस्टेंसी।
व्हाट अबाउट क्रूड ऑयल? देयर आल्सो यू थिंक देयर विल बी स्टेबिलिटी अराउंड दिस $70 पर बैरल लेवल, व्हिच साउंड्स वेरी गुड फॉर इंडिया, बट हाउ फार डू यू थिंक दिस स्टेबिलिटी
So, there's so many balls up in the air out there, because see, so tomorrow if there's some kind of understanding, deals struck between US and Iran, US and Russia, then the supply issues get sorted out a little bit. The administration out there wants to pump more. So you just don't know which way things are heading, and they could do, OPEC could do cuts.
उदयन, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद।
और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर।
एब्सोल्युटली, बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस फेल टू होल्ड इनिशियल गेन्स, सेंसेक्स फॉल्स 201 पॉइंट्स, निफ्टी क्लोजेस बिलो 22,400। Most Asian indices register decline, European indices display mixed trend, and global crude oil prices drop. Brent crude trades at $70.58 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
Market Patra.